मुश्किल अल्फाज की वजाहत। लफ्ज है अब रहू बारा हा और इसके मानी है हमेशा करना, बरी हा हमेशा करना, और जब साथ इसके आएगा ला अब रहू तो हमेशा ना करना। तो हमेशा होना या हमेशा रहना, इसके लिए तो वैसे खलदा वसबा जल्ला इस्तमर्रा चार लफ्ज मिलते हैं, लेकिन इनके अलावा अफाले नाक्सा में से भी हैं। ये जो है ना अब रहा, इसको अफाले नाक्सा कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। अफाले नाक्सा में हमें चार लफ्ज और मिलते हैं, दामा जाला अबरहा और फता। अब आप देखें कि दामा जो होता है क्या होता है, जैसे दायमी होना है ना, जैसे आप पीछे पढ़ चुकी हैं कि सूरत माइदा में कहते हैं बनी इसराइल के लोग, पालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा दामू। तो दामा क्या होता है कि हमेशा रहना, और लेकिन जब माँ ऊपर आ जाता है जब तक के है ना, तो माँ दामू। तो हरूफ नाफिया के साथ ये हमेशगी के मानी देते हैं, ये लफ्ज जो है हरूफ नाफिया, नफी का जब हर्फ लग जाता है तो उसके साथ ये हमेशा के मानी देते हैं, हमेशगी के मानी। मसलन जाला, जाला के मानी तो जायल होना है ना, टल जाना, जवाल पजीर होना। जब ला और माँ के साथ ये आएगा तो फिर ये हमेशगी के मानी देता है, वला तजालु तत्तालिउ वला खाइनतिन मिन्हुम, ये भी आप पढ़ चुकी हैं, इल्ला कलीलन मिन्हुम, ये भी सूरत नंबर 5। तो सूरत नंबर पहली कौन सी है, अल फातिहा, दूसरी अल बकरा, तीसरी आल इमरान, चौथी निसा, और पांचवी माईदा। मैंने आपको कहा था आप मायदा और अलिनाम का फर्क ऐसे भी याद कर सकती हैं कि लाम मीम नून, तो मायदा मीम पहले है और अलिनाम में शुरू में नून आता है ना, नून बाद में है। हरूफ़ तहजी के लिहाज से जैसे जहन में कोई बात रख सकती है ना कोई भी, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था तरतीब कि मायदा लाम मीम पहले आता है फिर नून आता है, तो मायदा में नून तो है ही नहीं ना, तो मायदा मीम, और अलिनाम में नून पाया जाता है, तो नून। तो जब हम हरूफ तहजी पढ़ते हैं तो लाम मीम नून। बहरहाल आप कोई भी निशानी रख सकती है किसी भी चीज की जो मिक्सिंग होती है, जैसे आज आपने बहुत अच्छी हुई बात कही थी कि मस्खरापन, तो आमतौर पे वो मस्खरापन है मजाक उड़ा उड़ा के हंसते हैं और हंसाते हैं ना, तो बैरूनी मजाक। अच्छा बहरहाल अब रहा, ये बरहा की जिद है बराजा। बराजा क्या है, खुले मैदान में सामने आना, नंगे होना, वाजे होना, लेकिन बरहा जब आता है तो खुले मैदान से हट जाना, और सिर्फ मजारे इस्तेमाल होता है। इसके साथ जब नफी का लफ्ज ला या लन आए तो ये जरफे मकान के लिए इस्तेमाल होता है, और हमेशा हत्ता के साथ ये मशरूत होता है, यानी अबरहा जब भी आएगा तो हत्ता इसके साथ जरूर आएगा, हत्ता के साथ ये मशरूत होता है। और अभी ये कुरान में आप आगे भी ये लफ्ज पढ़ेंगी, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में और आगे भी सूरत में, सूरत नंबर 20 में आप ये पढ़ेंगी, और यहाँ पर जो है अभी आप पढ़ रही हैं ना, तो मैं हरगिज नहीं हटूंगा से क्या मतलब है कि मैं चलता रहूंगा, है ना। तो अबरहा सिर्फ मजारे पर आता है, लाम और लन नफी के साथ और हत्ता से मशरूत, ये बातें याद रखें। दामा जो होता है ना ये माजी के में, सिर्फ माजी में आता है, माँ से मशरूत होता है, ये हालत की तब्दीली के लिए आता है, मकानी और जमानी ज़र्फ़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह फता जो है ये माजी और मजारे दोनों के लिए आता है, ला के साथ इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता से मशरूत होता है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कालू तल्लाह तफ्तहु तज़कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकिन, जो उनके बेटे कहने लगे कि वल्ला आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद ही करते रहेंगे इसी तरह, तफ्तहु हमेशा याद करते रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल अभी हम जो पढ़ रहे थे, यानी अफाले नाक्सा उसको कहते हैं कि खुद फेल होते नहीं लेकिन फेल के मानी देते हैं, थोड़ा इसमें चूंकि नक्स है तो इसलिए वो फेल के मानी देते हैं। एक होता है एग्जैक्ट फेल, एक चीज एक फेल नहीं लेकिन फेलिया तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको अफाले नाक्सा कहा जाता है। खैर ये अलग बात थी, लेकिन हम आपने जितनी भी बात सुनी थी उस सारी को आप खत्म भी कर दें, यानी आप सोचते हैं कि अब ये चीजें मिक्सिंग कैसे याद करूं, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी दें। तो बस फिर याद क्या रखना है, अब राहु बारा हा जो है और इसके मानी क्या है, हमेशा करना है ना, तो ये ला ला के साथ नफी के साथ ला मा इस तरह के हरूफ के साथ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके बाद अगला लफ्ज है ओ अमदिया, मीम द्वादिया, इसके रूट पर पता चल गया मानी क्या है, चलना। हुकुबा, हुकुबा जो है हा काफ बा के लिए, बा इसका रूटवर्ड है और इसके मानी है 70 या 80 साल और दूसरे मानी है गैर मुय्यन मुद्दत के। तो हुकुबा यानी बरसों सालों, मुद्दत हाय दराज करनों को कहते हैं, हुकुब जमाना, जमाना फिर जमाना जमाना, अब कितना जमाना, कोई 70 कहता है कोई 80 कहता है कोई कहता है ला मुंतहाई। फिर आगे चलें तो लफ्ज मिलता है हूता हुमा, हा वोता, कुरान में मछली के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक हूत का है और एक नून का है, और जुन नून किसे कहा गया है, अरे यूनस अलैहिस्सलाम को, अल्लाह बड़े प्यार से कहते हैं मछली वाला, है ना, हम तो नाराज हो जाते हैं ना किसी ने कोई किसी को कह दे मोतियों वाला, उसका मोतियों का कारोबार था तो मोती वाला, क्यों गई मैं मोती वाली नजर आती हूँ तुम्हें, है ना, हाँ मोहब्बत से कह सकते हैं, अगर किसी को बुरा ना लगे तो आप कह सकते हैं। तो हूत असल बात क्या है, ये इस्म जिन्स है और कुरान में जो है वो हूत का लफ्ज जो है मिलता है, तो इस्म जिन्स के मानी क्या होते हैं, वाहिद मुज़क्कर जमा गायब हर के लिए इस्तेमाल किया, मुज़क्कर और मुअन्नस वाहिद और जमा, हूत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इस्म जिन्स है। और नून जो है ये वैसे बड़ी मछली को कहते हैं, नून बड़ी मछली को कहते हैं। सराबा, I-61 में है सराबा, सीन राबा, चलना, पहाड़ों में रास्ता खोदने के लिए जो सुरंग बनाई जाती है ना उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और सराबा के मानी होते हैं बर्तन से पानी लेकर बह जाना, जैसे बर्तन है उसमें से पानी बह रहा है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और चलना भी है, सराब रेत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना, धोखा उसके लिए भी किया जाता है। जावजा, जीम मौजा, जौज से है हद से बढ़ना, तजावज आप उर्दू में कहती है ना कि तजावज मत करना, अभी आपने कहा था हद से तजावज करना और ये आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा वैसे, है ना। फिर है गदा अना, गैंदाल अलिफ, गदा नाश्ता, अगला दिन गदन, इशारों का वही रूट वर्ड है, नाश्ता निहारी। 62 लफ्ज है, 62 आयत है, लफ्ज है नसाबा, नून स्वादबा, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसकी खास बात यह है जवील अजदाद में से है, जवील अजदाद एक लफ्ज ऐसा होता है, जवील अजदाद ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो सेम टाइम टू मीनिंग रखता है, दो मानी रखता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिद अपनी रखता है, कोई भी लफ्ज जो अपनी जिद रखता है उसको जवील अजदाद कहते हैं, यानी जिदों वाला, ऑपोजिट मानी रखने वाला। तो नसाबा जो है नसब करना, सीधे रुख जमीन में गाड़ देना, और इसको इसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मसलन किस सूरत में आता है, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रईतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहमदि रब्बिका, आखिर में क्या है, बिहमदि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तवाबा। दूसरी कौन सी सूरत है, अलम नशरा, इसके आखिर में क्या आता है, इला रब्बिका फनसब, इला रब्बिका फनसब, शाबाश। तो इला रब्बिका फनसब, तो अपने रब की तरफ जो है वो मेहनत कर, اپنے رب کی رضا کے لیے جدوجہد کر، محنت کر، تو نصب اپنے آپ کو گاڑ، جیسے جھک جا، سیدھا ہو جا. نصب آپ کسی چیز کو جیسے کرتے ہیں تو سیدھے رخ پہ زمین میں کوئی چیز گاڑتے ہیں تو وہ نصب ہوتی ہے نا اس کے اندر. آپ نے پیچھے پڑھا تھا والانصاب، انصاب ہے نا، اس میں بھی آپ نے پڑھا تھا. اچھا اب اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ سخت محنت اور تھکاوٹ کی وجہ سے جسم کا سیدھا نہ رکھ سکنا انسان. بہت نصب سخت محنت کرنا بھی ہے، اور جب سخت محنت اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ اپنا جسم سیدھا نہ رکھ سکیں تو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ جب یہ علما یا علما سے آتا ہے تو الٹ معنی دیتا ہے، سیدھا نہ رکھنا، نصبہ سیدھا رکھ اور نصبہ سیدھا نہ رکھ سکنا. دونوں طرح آپ جب قرآن پڑھیں گے عربی زبان میں اس کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون سے معنی جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہاں پہ نصبہ سیدھا ہونے کے معنی میں نہیں ہے، تھک جانا، بری طرح تھک گئے ہیں. تو ویسے آپ کہیں گی کہ اگر ہم نے قرآن میں اور جگہ پڑھا ہے کہ وہ الی ربی کا فن سب، تو یہاں پہ تو وہاں تو مطلب یہ ہے کہ محنت کیجئے، مشقت کیجئے، سیدھا رکھیے اپنے نفس کو، اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ بری طرح تھک گئے ہیں. تو اب سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، بری وقت اپوزٹ معنی دیتا ہے. الحمدللہ. پھر ہے اوینا، حمزہ واو یا، آوا، ماوا پناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سخرا، سخرا جو ہے سواد خارا پہاڑ کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. فجاب السخرا بالواد. تو سخرا جو ہے یہ لفظ پہاڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پہاڑ کے لیے آپ نے کیا کیا پڑھا، جبل. شاباش. جبل اسم جنس ہے. جب میں اسم جنس بولوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جبل لفظ ہر طرح کے پہاڑ پر، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بلند ہے، پست ہے، سب پر اس کا استعمال کیا جائے گا. کیوں؟ اسم جنس بول دیا. دوسرا ہے رواسیا. راسین وہ کسی چیز کا جمع ہوا اور گڑا ہوا ہونا، تو وہ پہاڑ جو تین حصے اس کے زمین میں ہوتے ہیں اور ایک اوپر ہوتا ہے، تو اس کے لیے رواسیا لفظ بولا جاتا ہے. فجعلنا فی الارض رواسیا ان تمیدا بہم، قرآن میں آتا ہے. تیسرا ہے طود. فنفلک فکان کل فرق کالطود العظیم. طود کا لفظ پہاڑ کے لیے بھی آتا ہے، بہت بڑا پہاڑ، بلند بھی ہو اور پھیلاؤ میں بھی بڑا ہو. طود آپ کیا مطلب ہے کہ ایسا پہاڑ جو پھیلا ہوا بھی ہو وہ اور بلند بھی ہو. پھر پانچواں ہے سخرا. یہ چٹان کو کہتے ہیں، چھوٹا سا بلند پہاڑ، سخت پتھر، ایک بہت بڑا پتھر لیکن کافی بلندی تک چلا گیا. ٹھیک ہے. وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. تو ہے تو پہاڑی پر چھوٹا ہے، بہت بڑا نہیں ہے. چھوٹا اور بلند پہاڑ، بہت بڑا سا اونچا پتھر، چٹان وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ. نسیتو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا. تو نسیا. اور انسان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا. تو ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا روٹ ورڈ الف نون سین، یعنی اور الف پر آپ حمزہ دے دیں، انس. انس سے بھی ہے کہ انسان آپس میں مل جل کر محبت سے رہنا پسند کرتا ہے، لیکن نسیا سے بھی ہے. بعض الفاظ کے دو روٹ ورڈ بھی ہوتے ہیں نا، تو نون سین یا بھی ہے، بھولتا بھی انسان بہت ہے نا. تو یہاں پہ نسیتو بھولنے کے معنی میں ہے. اور الہود کی خاص بات کیا تھی؟ اسم جنس. شاباش. انسانی ہوں روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا. مجھے سب کی آواز نہیں آتی. انسانی ہوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا. آئے 64 ہے اور لفظ ہے قصاصا. قاف سواد، سواد، اور اس کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا. ہاں اسی سے قصہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب قصہ اور پیچھے پیچھے آنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو قصہ سناتا ہے وہ جو بھی قصہ کہانی ہوتی ہے، جو واقعہ ہوتا ہے نا، اس کی کڑیوں کو ملاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. واقعے کے نشانوں پر قدم رکھتے ہوئے وہ ذہنی طور پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا، اور وہ سناتا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو قصہ کہا جاتا ہے. قصص. اچھا جی پھر ہے آیت نمبر، آپ آ جائیے 69 میں، امرا. हमजा मीम रा। अच्छा हमजा मीम रा अमर उमूर काम को कहते हैं है ना, और अमर हुक्म अवामिर को कहते हैं। लेकिन अगर हमजा के नीचे जेर आ जाए इम्र, तो सख्त नापसंदीदा बात जो शरीयत और अकल दोनों के खिलाफ हो, इमरा। तो यहाँ पे असल में जो अमरा लफ्ज है ये इमरा के मानी में इस्तेमाल हुआ है। फिर है आयत 71 है और लफ्ज है खरकहा, खारा काफ, किसी चीज को बिगाड़ने के लिए फाड़ना, किसी चीज को खराब करने के लिए फाड़ना, खरका। अच्छा आप देखें, आपने पीछे सूरत यूसुफ में एक लफ्ज पढ़ा था कद्दा, लंबाई के रुख पर फाड़ना, और फजारा वसी पैमाने पर जो है वो फाड़ना, और शक्का सख्त और मोटी चीजों को फाड़ना, जैसे सूरज चांद अनशक्कल कमर है ना। तो समझ हो रही है अब आपको अल्फाज के मानी में फर्क नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। फतरा भी है हाँ, उसमें लंबाई के रुख पर जो है वो फाड़ना। हाँ इफ्तार भी इसी से है कि उसमें सुराख कर देना, लंबाई के रुख पर फाड़ना, सुराख कर देना। कद्दा भी लंबाई के रुख पर फाड़ना पर सुराख नहीं है, ये फर्क है दोनों में। अच्छा जी कोई बात नहीं, अब आपको माशाल्लाह आता ही है। और फिर लफ्ज है खरा कहा से पहले सफीना, सीन फानून। तो सफीना सीन फानून ये कहते हैं छीलना और नरम बनाना। सफन इसके मानी होते हैं छीलना नरम बनाना। और ये जो कश्तियां और जहाज जब बनते हैं तो इसमें लकड़ियां भी छीली जाती हैं, लकड़ियां फाड़ी जाती हैं, नरम की जाती हैं, फिर उनको जैसे उनको अपनी जरूरत के मुताबिक कश्तियों और पहाड़ों में जोड़ लिया, उसमें कश्तियों और जहाजों में जोड़ लिया जाता है। तो सफीना ऐसी कश्ती है जो तराश खराश करके हमवार और आरामदेह बना दी गई हो। और जो फुल्क होता है, फुल्क जो है किसी चीज के गोल होने, चक्कर खाने और घूमने पर दलालत करता है, ये भी कश्ती को कहते हैं। अब दरिया का जो भंवर है उसको भी फुल्क कहते हैं कि चारों तरफ से पानी जब जमा होकर चक्कर खाने लगता है तो उसको भी फुल्क कहते हैं। और ये जो सितारे अपने मदार में जो चलते हैं, हाँ सितारे जब अपने अजराम में चलते हैं जो उनके घूमने का रास्ता होता है, हाँ तो उसको भी फुल्क कहते हैं, फलक फुल्क है ना, फलक अजराम फलकी। इसीलिए आसमान को भी फलक कहा जाता है कि उसमें सितारे अपने अपने रास्तों पर चलते रहते हैं ना। तो फिर फलक हर वो चीज जो बुलंद हो, उभरी हुई हो और गोल हो। और अब फिर कश्ती को फुल्क क्यों कहते हैं, इसलिए कि वो बुलंद है, उभरी हुई होती है और गोलाई चक्कर खाती रहती है, इधर से उधर उधर पानी की मौजें उसको बहाकर हवाओं के थपेड़े उसको ले जाते रहते हैं है ना। तो चक्कर लगाते रहने की वजह से कश्ती को भी फुल्क कहा जाता है। और कुरान में जो है फुल्क के साथ अक्सर मशहून का लफ्ज आया है, मशहून। कश्ती में सामान लादना और भरना, शहाना होता है कश्ती में सामान लादना और भरना। और कश्ती आमतौर पर भरी भी होती है या तो सामान से या इंसानों से, मुसाफरों से। तो बहरहाल एक है जारिया, चलना बहना, तो कश्ती के लिए भी जारिया लफ्ज इस्तेमाल होता है। वलहुल जवारुल मुनशआतु फिल बहरिकल आलाम, कौन सी सूरत है, सूरत अर रहमान, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। तो खैर, तो कश्ती के लिए कुरान ने तीन लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक जारिया, दूसरा सफीना और तीसरा है फुल्क का। तो चलने की वजह से कश्ती जो कि चलती है जारी रहती है तो जारिया, हमवार और आरामदेह होने की वजह से सफीना, और कश्ती नुमा होने की वजह से फुल्क का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से अल्फाज हम इसी तरह उसका तैया पांचा करते हुए आगे चलते हैं, तो उसको तोड़कर जोड़कर। तो इसलिए हम आगे आगे इस तरह से चलते हैं कि आपको समझ आए कि जब कुरान एक ही चीज के लिए मुख्तलिफ लफ्ज जब इस्तेमाल करता है तो इसके अंदर हुस्न क्या है, लज्जत क्या है। खैर आगे चलते हैं, फिर आगे इमरा आ गया है ना, 69 आयत पे अमरा आ गया था, वहां पे आप देख लें काम के लिए आता है ना, اور امرا آ گیا تو یہاں پہ ناپسندیدہ سخت بات یا کام جو شریعت اور عقل کے خلاف ہو. تو حرکت کے فرق نے معنی میں فرق پیدا کر دیا. پھر آپ آئیے آیت نمبر ہے 73 اور لفظ ہے ترہقنی راہا قاف. راہا قاف جو ہے ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھ جانا, اسے دبا لینا, اسے چھپا لینا. کیسے؟ ترہقوہا قطرا, ہاں کہ اس پر سیاہی جو ہے وہ چڑھی جاتی ہے. ترہقوہم ذلہ, ذلت ان پر چھائی جاتی ہے. تو را ہا قاف یہ ہے اس کا روٹ ورڈ, اور اس سے مراد کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, اور نہ مجھ پر ڈال اور نہ مجھ پر چڑھ, من امری میرے معاملے میں اسرا مشکل, کوئی مشکل. پھر آپ دیکھیے کہ آخری جو لفظ ہے لقد جئت شیئا نکرا, نون کا افرا, انکار بھی اسی سے ہے.